उस विरह दशा में परिजल्प नाम करके जो प्रलाप वचन विजल्प वचन प्रकट हुआ है, परिजल्प का लक्षण वर्णन किया है कि जहां पर प्यारे की निर्दयता शठता का वर्णन कर अपनी चतुराई का वर्णन किया जाए उसका नाम है परिजल्प। तो कहने लगे सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाए स्वा सुमन से सज्ज तत्व स्नान भवाद्र परिचरत कथम तत्पाद पद्मं तु पद्मा यदि पत्रभुत चेता उत्तम श्लोक जल पाई। बोले अरे भोरा तेरा वो स्वामी अत्यंत अत्यंत निर्दय है, तेरा स्वामी अत्यंत अत्यंत शक है। तो सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाए स्वा, उसने अपनी मोहिनी अधर सुधा का हमको पान कराया। एक बार हमको पान करा करके तो आज हमारा त्याग करके वो मथुरा जा बैठा है। सुमन से वो सद्य तत्व स्मान भवाद्र, जैसे तू भी कली के रस को लेकर के और फिर उस कली की ओर देखता ही नहीं है, तू भोरे का जैसे स्वाद ले लेता है। अरे भोरा तू कली का रस लेकर के और जैसे तू दूर चला जाता है ऐसे वह भी हमें हमारे रस को ग्रहण करके दूर चला गया है, दूर चला गया है। सकत अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाए स्वा, हाँ उसकी अधर को हमने सुधा समझा था परंतु आज पता लग रहा है कि उसकी अधर सुधा सुधा नहीं है, वह तो हद बस काफी, वह तो मोहित करने वाला कोई अपूर्व मोह दम्भ में डालने वाला कोई अपूर्व विषैला पदार्थ ही था जिसको प्राप्त करके हम देगे सब की स्तुति को भूल गई थी। कुंजांग में स्वधरा मुस्कुर के हासावलोक कल गीतज हृदय आदमी, श्री प्रिया जी उसी वचन का स्मरण कर रही है कि प्यारे तेरी हाथ जो है वही है कपूर, अवलोक नहीं है वही है चिंगारी और कल गीत नहीं है वही है फूक। उसने हमारे हृदय में विरह की अग्नि को ही उत्पन्न कर दिया। प्यारे सिंचांग घड़ा में स्कूल के हो जो आग लगाए वही आग को बुझा दे तो उसे कम से कम आग लगाने का पाप नहीं लगता। तूने ही हमारे हृदय में विरह की अग्नि लगाई है, तू ही इस अग्नि को बुझा दे बुझा दे। जैसे रास में कह रही है ऐसे यहां कह रही है कि ये मन में विचार करते हुए कि उसने हमारे हृदय में अग्नि लगाई है उसके अधरामृत के पान करने से ही ये अग्नि बुझ जाएगी, हाय हमने उसके अधरामृत का पान किया और अधरामृत का पान करके अपने हृदय में लगी हुई उस विरह की अग्नि को दूर करने का प्रयत्न किया परंतु हमको ये पता नहीं था कि ये अधरामृत जिसको अमृत समझ करके अग्नि का निर्वपण समझ करके हम पान कर रही है वो तत्वतः अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य नहीं रखता है बल्कि वह अग्नि को उल्टा और बढ़ा देता है। तो सकृत अधर सुधाम स्वाम, सकृत माने एक बात, उसने अधर सुधा अपनी जो अधर सुधा है उस अपनी सुधा अधर सुधा का हमको पान कराया परंतु ये अधर सुधा नहीं थी मोहिनी थी। सुमन से सद्य सत्य परंतु उसने जैसे तू पूर्वों का त्याग कर देता है ऐसे उसने हमारा त्याग कर दिया भवाद्र तेरे समान, परंतु अब हम सावधान हो गई हैं उसकी बातों में कभी आने वाली नहीं है। हमको तो आश्चर्य होता है कि परिचरत कथम तब पाद पद्मं तो पद्मा, वो लक्ष्मी उसके चरण कमलों की कैसे आराधना कर रही है। लक्ष्मी कभी हमारे ब्रज में आए और यदि मेरी चेरी बने मेरी दासी बने तब मैं समझाऊं कि खबरदार उस चंचल की बातों में कभी आना ही मत। परिचरत कथम तक पाद पद्मं तो पद्मा, आश्चर्य की बात है पद्मा इतनी निर्मल होते हुए पद्म से उसका जन्म हुआ है कमल से उसका जन्म हुआ है, परम निर्मल स्वभाव वाली होकर के वो विराजमान है, वो उसके चरणों की हाय कैसे अभी तक सेवा करती हुई विराजमान है। अपवत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई। मालूम होता है श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन करके, केवल उनके गुणों का दर्शन करके अथवा उनके रूप का दर्शन करके वो विमोहित हो गई है। लक्ष्मी ने उसके लक्षण नहीं देखे। यदि हमारे पास में आए तो हम बताएं उस श्याम के क्या लक्षण है, ये हम जानती हैं। लक्ष्मी कभी आए हमारी दासी बनकर के रहे तो सही, हमारी चेली बनकर के रहे तो सही, तब हम बताएंगे कि अरे उसके नाम ही नाम उसके गुणों को तूने सुन रखा है। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक तो वो तब होगा यदि दीनहीनों के ऊपर वो कृपा करे, उसका नाम उत्तम श्लोक है। हम इस समय दीन होकर के विराजमान है, हम गोपियों के ऊपर यदि वो कृपा करे तब तो उसका उत्तम श्लोक ये नाम सत्य है, अन्यथा उत्तम श्लोक जलपई। उत्तम श्लोक ये तो केवल जल्प मात्र है, ये तो केवल नाम मात्र है। नाम के लिए कोई भी कुछ भी उपाधि धारण कर ले, उसको उत्तम श्लोक ये उपाधि धारण कर रखी है। उत्तम श्लोक ताके गुण उसमें नहीं है। अतः हम परम सावधान हैं, जब तक वो यहां पर आकर के हमारी सेवा नहीं करेगा तब तक हम ये मानने वाले नहीं है कि वो उत्तम श्लोक है। और लक्ष्मी यदि आए हमारे पास में तो हम उसको भी समझा देंगे कि अरे लक्ष्मी खबरदार, उसकी बातों में भूल करके भी तू आनम। तो सकत अधर सधाम स्वाम मोहिनी पाए स्वा सुमन से सद्य स्मान। उसने एक बार अधर सुधा का पान कराया, अधर सुधा का पान कराते हुए भी केवल सुधा का यो ही पान नहीं बल्कि बोल बोल करके मधुरिया गिरा वाणी के सहित बोल बोल करके उसने अधर सुधा का पान किया। हम तो ये समझ रही थी अधर सुधा सुंदर अमृत होगी, परंतु वो अमृत तो नहीं निकली, वो तो ठगबटका निकली। जैसे कोई सामान लूटने वाला ठग पहले साथी को सहयात्री को कोई पान में मिलाकर के, तमाकू में मिलाकर के, सुपारी में मिलाकर के कोई जहर खिला दे, खाने में तो बड़ा मीठा लगे और तुरंत पेट में जलन हो जाए, जैसे वो देह के ही किसको भूल जाए, ऐसे उसके अधर सुधा का पान करके हम भी विमोहित हो गई और विमोहित होकर के हमारी ये दशा हो गई। यह लक्ष्मी आई, लक्ष्मी को हम बताएंगे। लक्ष्मी ने केवल उसके गुणों को ही सुना है और गुणों को सुन सुन करके ही वो हृदय चेता हो गई है, उसने उसके लक्षण नहीं देखे, परंतु हम लक्षण देख चुकी है अपनी विरद्धता और श्याम सुंदर की कठोरता, इन दोनों का गायन करने लगे। इतने में ही श्री प्रिया के हृदय में गुरु मान जो है वो उत्पन्न हुआ है और मान मुद्रा को धारण करके कटाक्ष पूर्ण उक्ति श्री श्याम सुंदर के प्रति ये कहने लगे। आक्षेप में जो उक्ति है उनको कहने लगी, उसी का नाम है उज्जवल विजल, कि जहां पर गुण मान में कटाक्ष में उक्तियों का गायन है। तो कहने लगे कि मेह बहु षडंग्रे गाय सुम यदि नाम अधिपति अग्रहाम अग्रतो न पुराण विजय सख सखी नाम जीयताम तत्प्रसंग क्षपित कुछ रुजस्ते कल्पयंती निष्ठा। बोले कि मेह बहु षडंग है, बोले अरे देह पशु, एक तो होता है दो पैर वाला, एक होता है चार पैर वाला। चार पैर वाले को कहा जाता है पशु, परंतु अरे छह पैर वाले, तू तो देह पशु है, तेरी मूर्खता का तो कोई ठिकाना नहीं। कि मैं बहु षडंग है, अरे छह पैर वाले, अरे देह पशु, क्यों हमारे चरणों में बार बार गिर रहा है? ये क्रोध में हृदय में जो भीतर मान है, उस मान में शिवप्रियाओं के मुख से निकले हुए वचन, ये मान परम परम रत्न है। जगत में एक बार विधाता ने जितना भी अमृत था उस अमृत को मथा, अमृत को मथने पर एक वस्तु उत्पन्न हुई, उस वस्तु का नाम था काली। विधाता ने दोबारा विश्व भर में जितना भी विष था उस विष को इकट्ठा किया और उस विष को भी इकट्ठा करके उसने उस विष को भी मथा, उससे भी एक वस्तु उत्पन्न हुई, उस वस्तु का भी नाम था गाली। अमीय गार गारो गरल गाल कीन करता, विधाता ने अमीय गार अमीय अमृत जो था उसको मथा, उससे भी गाली उत्पन्न हुई और गारो गरल उसमें गरल जो था विष, उस विष को भी मथा और उससे भी एक चीज उत्पन्न हुई उसका भी नाम था गाली। परंतु तो गाली गाली में अमृत था, अंतर था। एक जो गाली थी वो तो हुई ही परम परम प्रिय और दूसरी गाली बैर का कारण हो गए। अमीय गार गारो गरल गाल कीन करता, प्रेम द्वेष के कारण जाने बुध न गमा। जो बुद्धिमान जन है वो तो इसके तत्व को जानते हैं, जो गंवार जन है वो इस तत्व को नहीं जानते हैं। गाली दी जाती है द्वेष में भी, गाली दी जाती है प्रेम में भी, परंतु प्रेम की गाली बड़ी मीठी होती है। उसके आगे सारे स्तोत्र तुच्छ हो जाए। स्तोत्रम यत्र तटस्थताम, वर्णन क्या है कि जहां पर स्तोत्र गायन जो है वो तो हो जाए तटस्थता और जहां पर निंदा वही हो जाए स्तुति। ये प्रेम रूप अपूर्व जो प्रेम पत्तन है उस प्रेम पत्तन की अपूर्वता है। हमारे बड़े श्री रस्को पंच गोस्वामी साहब, उनका एक ग्रंथ है प्रेम पत्तनम, संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रधान प्रेम पत्तनम। उस प्रेम पत्तन में निरूपण किया कि एक नगर था, समुद्र के किनारे जो नगर होता है उसका नाम होता है पत्तन। एक प्रेम पत्तनम नाम करके एक पत्तन था, नगर था। उस नगर के एक राजा थे और उन राजा का नाम था मधुर लेखक। उन धनी का कोई मधुर नहीं और उनका जो स्वरूप है वो लेखक है, मेघ श्याम वर्ण का उनका स्वरूप है। बंसी बजाते हैं, राजा बंसी बजाने के बड़े शौकीन है और वे रथ के उस प्रेम पत्तन के वे अधीश्वर होकर के प्रमुख शासक होकर के विराजमान। उन मधुर मेचक राजा की दो प्रियाएं थी, एक प्रिया है नीति और एक प्रिया है प्रीति। उन्होंने सारे जगत का शासन नीति नामक अपनी प्रिया को ही सौंप रखा था और वे नीति नामक कर उनकी जो प्रिया वे वेद रूप अपने आदेशों को प्रकट करके सारे जगत का नियंत्रण कर रही थी। उनका वेद वैदिक जो अनुशासन वो वैदिक अनुशासन ही सारे जगत का निर्धारण करने वाला था। परंतु राजा की प्रीति अपनी बड़ी रानी नीति में नहीं थी, राजा की प्रीति तो अपनी दूसरी रानी प्रीति में ही थी। प्रीति राजा से आदेश प्रदान कर रही है कि मेरे अपने नगर का शासन मैं चलाऊंगी, मेरे नगर का शासन सपत्नी नहीं चला सकती है, नीति नहीं चला सकती है। तो राजा ने जितना भी अधिकार था नीति का वो नीति के सारे अधिकारों को छीन करके अपनी परम प्रिय प्रिया प्रीति को ही सारे अधिकार प्रदान कर दिए। प्रीति ने वहां पर घोषणा की कि आज से ये घोषणा की जाती है कि यत्र धर्मेव अधर्मः, कि इस प्रेम राज्य में धर्म आज से हो जाएगा अधर्म, यहां पर आज से अपमान हो जाएगा सम्मान और सम्मान हो जाएगा अपमान। आज से ये घोषणा की जाती है कि यहां पर झूठ तो हो जाएगी सत्य और सत्य हो जाएगा झूठ। तब से उस प्रेम पत्तन के अधिकार को वे प्रीति श्री श्याम सुंदर की से अभिन्न स्वरूपा परम प्रिय वो मधुर मेचक जो राजा है उनसे अभिन्न स्वरूपा वो जो प्रीति प्रेम की पाप आस्था स्वरूप मारना की महाभाव मई कोई जो प्रिया है कोई प्रिया मारना की महाभाव स्वरूपा उन प्रीति स्वरूपा उन प्रिया ने ये आदेश प्रदान किया कि आज से ये आदेश प्रदान किया जाता है कि यत्र धर्म एव अधर्म अधर्म एव धर्म। अतः श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जिस समय दानकेल कौमुदी की रूप समिति के दानकेल कौमुदी की टीका करने के लिए बैठे सबसे पहले वंदना कर रहे हैं कि दानकेल कलौ लुप्त धर्म मर्यादियोर भजे राधा माधवियोर दंभ लोभ प्रीति मदान नृतम। कि हम वंदना कर रहे हैं काय की वो दंभ की वंदना करें हम लोभ की वंदना करें हम क्रोध की वंदना करें हम मद की वंदना करें हम अमृत की वंदना करें जगत तो वंदना करें शक्ति की और यहां पर वंदना की जा रही है अमृत की। श्याम सुंदर आप विराजमान हैं घट्टी पाल होकर के विराजमान हैं और जब गोपदारों के सामने आपकी एक भी न चले आप कहें कि वृंदावन के ऊपर मदन नृपति जो है उनका शासन है और मदन नृपति ने मुझे यहाँ पर दान घाटी का घट्टीपाल बनाकर के विराजमान किया है तो अभी अभी इन गोपियों ने ये कहा श्री ललिता श्री राधिका से कह रही थी बोले अरे सखे तुम महाभार से आक्रांत हो रही हो तुमने अपने माथे के ऊपर दही की ये कलसी रख रखी है तुम महाभार से आक्रांत हो रही हो अरे सखी अपनी कलसी को तुम कोमलांगी हो मुझे दे दो मुझे दे दो। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इन्होंने महाभार धारण किया हुआ है और महाभार की यदि गणना की जाए तो महाभार की गणना के अनुसार इन गोपदारों का के ऊपर जो भार है वो भार 80,000 तोले इन्होंने अपने मस्तक के ऊपर भार धारण कर रखा है। उसमें चार जो है वो घट्टी पाल का भी कर होता है ऐसे मिलाकर के 84,00,000 तोला यह इन गोपियों के ऊपर कर बना। एक तोले के हिसाब से यदि हम ग्रहण करें शास्त्र की विधि के अनुसार तो हमारा अपना जो कर है वो 84,00,000 तोला होता है। ऐसे आप जिस समय बहुत बड़ा एक कर ग्रहण करने के लिए विराजमान हो रहे हैं कह रहे हैं कि तुमने अपने माथे के ऊपर जो भार कलशिया रख रखी है सभी गोपी कह रही है इसका कलशिया में भार कहां से आ जाएगा। परंतु श्री श्याम सुंदर जिस समय कह रहे हैं वो हट कर के बैठे कि ये पांच गोपी हैं और पांच गोपियों के द्वारा पांच कलशियां ली जा रही हैं अतः इन गोपियों से दान घाटी का जो कर उस कर को वसूल किया जाए। श्री स्वामी जी के तो मन ही मन में अपूर्व रूप से आनंद की प्राप्ति हो रही है रहा नहीं जा रहा है और उस समय श्री तुंग विद्या जी कहती है वो तुंग विद्या तुम ही बोलो। तुंग विद्या जी श्याम सुंदर के पास में आके बोली वो श्याम सुंदर हमारी सखी अभी तक आपके सामने मौन थी परंतु अब हम मौन नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोला तुम्हारी मित्रता का विचार करके तुम्हारे साथ में हमारी सहज प्रीति है उस प्रीति का विचार करके एक गांव की रहने वाली है ये विचार करके हमारी सखी अभी तक तुमसे कुछ कह नहीं रही थी परंतु जब तुमने संकोच तोड़ दिया है और तुम हमसे कर ग्रहण करने के लिए जब तैयारी हो रहे हो तो हम भी आप पीछे नहीं रहेंगे। हमारी सखी ने आदेश प्रदान किया है कि आपने जब से वृंदावन में गैया चराना प्रारंभ किया हमारी तुम्हारी गैयाओं ने हमारे वृंदावन के कितने पुष्पों को कितनी तृणों को खाया होगा और तब से गैया चरा रहे हो इसलिए वृंदावन में गैया चराने का जो कर है वो आप उल्टा हमको प्रदान करो। हमारी श्री राधिका वृंदावन की अधीश्वरी है और वे आपको आदेश प्रदान कर रही है कि आपने बिना हमारी अनुमति के वृंदावन में अपनी जो गैयाएं चराई हैं उनका कर आप हमको प्रदान करो। श्याम सुंदर बोले वाह वृंदावन तो हमारा राज्य वो तुम्हारा राज्य कब से है? वृंदावन को हमारी सखी श्री राधिका का साम्राज्य होकर के विराजमान। रामचंद्र बोले, मधुमंगल आगे बढ़े और मधुमंगल बोले, बोले वाह वृंदावन के ऊपर जिस समय श्याम सुंदर ने गोवर्धन धारण किया और इंद्र ने आकर के सुरभि ने आकर के आपका गोविंद नाम से अभिषेक किया, इंद्र ने बाबा से प्रार्थना की थी कि हे ब्रजराज आप अपने पुत्र का ब्रज नवयुवराज करके अभिषेक करें और श्याम सुंदर का ब्रज नवयुवराज के रूप में उस समय अभिषेक हुआ। 84 को संपूर्ण ब्रजमंडल उस ब्रजमंडल के श्याम सुंदर अधीश्वर हुए और 84 को ब्रजमंडल के भीतर ही वृंदावन है। अतः वृंदावन भी हमारा राज्य है, हम अपने राज्य में भैया चढ़ा रहे हैं, तुमको करकार को प्रदान करेंगे। श्री सुंदरजय जी बोले, बोले वृंदे तुम ही इस समय आगे बताओ। मुझे तो उस दिन की याद आ रही है जब हमारी सखी श्री राधिका का राज्याभिषेक हुआ था। श्री वृंदा जी उस समय श्री श्याम सुंदर के श्री किशोरी जी के राज्याभिषेक की जो लीला, उस राज्याभिषेक की लीला का गायन करने लगी। बोले श्री पौर्णमासी जी के हृदय में बड़ी अभिलाषा कि श्री राधिका राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हो। एक दिन सब सखियों ने आकर के श्री पौर्णमासी जी से कहा कि श्याम सुंदर का जैसे ब्रज नवयुवराज रूप में अभिषेक हुआ है, ऐसे ही हम वृंदावनेश्वरी नुकुंजेश्वरी के रूप में अपनी प्राण प्रिय सखी श्री राधिका का राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं। श्री पौर्णमासी जी अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं और उन्होंने वृंदा जी से कहा कि वृंदा तुम देवी हो, तुम जाकर के जितनी भी देवी हैं उन देवियों को निमंत्रण करो और ये बड़ा सुंदर विचार है श्री राधिका का राज्याभिषेक किया जाए। श्री वृंदा जी उस समय पधारी और वृंदा जी ने 5 देवियों को निमंत्रण दिया। सूर्य भगवान की दोनों पत्नी संज्ञा और छाया जी, वे दोनों की दोनों पधारी हैं। श्री मानसी गंगा और श्री यमुना, इन दोनों देवियों को निमंत्रण दिया। श्री मानसी गंगा और श्री यमुना ये भी मूर्तिमती होकर के उस राज्याभिषेक में उपस्थित हुई। श्री कृष्ण की छोटी बहन यशोदा पुत्री श्री एकनंशा, उनको निमंत्रण दिया। श्री एकनंशा जी भी उस समय पधारी हैं। 5 देवी आई हैं। संपूर्ण नुकुंज मंदिर को अपूर्ण रूप से सजाया गया। श्री स्वामी जी का उस समय जब उपासना करके अभिषेक करने का अवसर आया है, इतने में ही शंख मृदंग दुंध भी सब बज रहे हैं। अपूर्ण रूप से नुकुंज मंदिर को सजाया गया है। द्वार के ऊपर श्री सरस्वती जी आकाश में अवस्थित होकर के उस लीला में प्रविष्ट होने की प्रतीक्षा देख रही हैं। द्वारपालिका ने आकर के वृंदारिका ने श्री रूपमंजरी से कहा, बोले श्री सरस्वती देवी निकुंज मंदिर के द्वार पर आकाश मार्ग में खड़ी होकर के प्रतीक्षा देख रही हैं, यदि आपका आदेश हो तो उनको बुलाया जाए। किशोरी जी तो बड़ी उदार, ललिता जी बड़ी उदार, बोले अरे बुला लो बुला लो, हम तो गलती हो गई, हमने सरस्वती को निमंत्रण नहीं दिया, पर कोई बात नहीं आ गई है तो बुला लो बुला लो, हमको निमंत्रण देना चाहिए था। जब सब नदियों को निमंत्रण दिया, गंगा यमुना को निमंत्रण दिया, तो सरस्वती को भी निमंत्रण देना चाहिए था, पर सरस्वती जी को निमंत्रण नहीं दिया, बुला लो। श्री सरस्वती जी उस समय पधारी, किशोरी जी के श्री चरणारविंद में प्रणाम करती हुई अपने हाथ में बड़ी सुंदर रत्न जटित एक सितार का लेकर के आई है। एक संदूक है, उस संदूक को इन्होंने दासियों को दिया है। दासियों ने वो संदूक श्री ललिता जी को दी। ललिता जी ने जो खोला, सरस्वती जी बताती जा रही हैं, बोले ये सब देवियों के द्वारा भेजे गए दिव्य आभूषण रत्न अलंकार हैं, जिनको श्री राधा रानी के राज्याभिषेक के अवसर पर उन देवियों ने श्री राधा रानी की सेवा में भेंट रूप में समर्पित किया है, भेजा है। ये साड़ी है जो कि समुद्र पत्नी नदियों ने प्रदान की है। ये कुंडल है जो नाग पत्नियों ने प्रदान किए हैं, ये किरीट है जिसको के इंद्र की पत्नी शची ने भिजवाया है, ये सिंदूर बिंदु है जिनको शिव की पत्नी पार्वती ने श्री राधिका की सेवा में समर्पित किया है, ये सुंदर हार है जिनको जितनी भी देवांगना उन देवांगनाओं ने समर्पित किया और ये हार मेरी ओर से भेंट है। ऐसे सुंदर सुंदर हार, सुंदर सुंदर आभूषण जब श्री राधिका की सेवा में समर्पित किए, श्री किशोरी जी तो बड़ी उदार, ललिता जी कह रही है हाँ ठीक है रख लो, बंद करके जो रखने लगी, श्री देवियों का कहीं मन फीका नहीं पड़ जाए, किशोरी जी बड़ी उदार आदर देती हुई बोली, बोले आहा बड़े भाग्य की बात, आज हम मानुषी के ऊपर कृपा करने के लिए देवियों ने स्वर्ग की मनुष्य लोक में दुर्लभ जो संपत्ति, उस संपत्ति इन दुर्लभ हारों को हमारे पास में भेजा है, उनकी कैसी मेरे ऊपर अनुग्रह, ऐसे उदारता के वचन कहकर के सबको धैर्य प्रदान कर रही है। अन्यथा कहां तो श्री ब्रज की संपत्ति और कहां वो स्वर्ग की संपत्ति, ब्रज की संपत्ति के आगे कोई उस स्वर्गीय संपत्ति की कोई कीमत नहीं है, पर कीमत न होने पर भी ये आदर प्रदान करते हुए कह रही है, बोल तुम आज मेरे ऊपर बड़ा हरिय अनुग्रह हुआ है जो इस संपत्ति को मेरे पास में भेजा है। श्री राधा रानी का उस समय अभिषेक हुआ, अभिषेक करा करके सुंदर वस्त्र जो है उन वस्त्रों को धारण करके, आभूषण धारण करके जिस समय श्री राधा रानी विराजमान हुई, पास में ही कोई श्यामल देवता विराजमान थे, उन श्यामल देवता के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान कुमकुम, उस कुमकुम को लेकर के अपने अंगुष्ठ से उस समय श्री पौर्णमासी जी ने श्री राधा रानी के श्रीमस्तक के ऊपर राज्य तिलक किया है। सब वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की जय जयकार कर रहे हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी श्रृंगार कर रही हैं। श्री ललिता ने सुंदर जो विशाखा ने जो श्रृंगार धारण कराया, उस श्रृंगार में से एक माला श्री ललिता ने अपने हाथ में ले ली, उस संदूक में जो मालाएं थी उनमें से एक माला ले ली, और एक माला लेकर के पास में ही जो श्यामल देवता विराजमान थे श्री श्याम सुंदर, उनके कंठ में भी माला धारण करा दी। श्री एक मिनसा जी ने, एक मिनसा जी बीच में ही आई और एक मिनसा ने वो जो मालाएं थी उन माला में से एक माला लेकर के श्री श्याम सुंदर के कंठ में धारण करा दी। ओ धारण करानो नहीं, ललिता जी की तो चोरी चढ़ गई, और ललिता उस समय बोली कि हूं जगत में कहते हैं घेटू पेट की ओर ही झुकता है, अरे इन्होंने अपने भाई का पक्ष लिया, जो माला आई थी हमारी सखी राधिका के लिए, आखिर में कृष्ण की बहन है ना, कृष्ण की बहन होकर के हमारी सखी की माला तो इन्होंने अपने भाई को पहना दिया, यहां पर भी ननद पन्ना दिखा रही है अपना, यहां पर हमारी माला तो इन्होंने देखो श्री कृष्ण के कंठ में धारण कराया। एक मिनसा कह रही है, बोले अरे ललिता बड़ा बड़ी अक्रिया रख रही हो, यदि ऐसी बात है लो तुम्हारे ही सखी की माला तो तुम्हारी सखी को ही लौटा देती है, ऐसा कहकर के श्याम सुंदर के कंठ में उस माला को तो रहने दिया और उसके स्थान पर दूसरी वैसी जो माला थी उस माला को उतार करके श्री राधा रानी के कंठ में धारण करा दिया। जय जय श्री राधे। ललिता जी तो त्योरी कह रही है, कह रही है तो कह रही है, अब उसे आनंद हो रहा है, हमारी सखी श्री राधिका का राज्याभिषेक हुआ, वो ठीक है वृंदावन राज्य के भीतर ही तो श्री राधिका का राज्याभिषेक हुआ, वृंदावन राज्य के अधीश्वर तो हमारी श्याम सुंदर है। श्री मधुमंगल बोले, बोले वृंदावन के अधीश्वर तो हमारी श्याम सुंदर है, हमारे सखा है। ललिता बोली, श्री तुंग विद्या बोली, बोले अरे ब्राह्मण, अरे बतुक, हम तुझसे ही पूछती हैं राजनीति क्या कहती है, कौन सा राजा माना जाए, جس کا راجابھیشیک پہلے ہوا اسے راجا مانا جائے گا، جس کا راجابھیشیک بعد میں ہوا اسے راجا مانا جائے گا. راجنیتی یہ کہتی ہے کہ جس کا راجابھیشیک بعد میں ہوا وہ راجا ہے. شام سندر کے راجابھیشیک کے بعد میں ہماری سکھی شری رادھکا کا راجابھیشیک ہوا، اس لیے برنداون کی رانی، برنداون کی ادھیشوری شری رادھا رانی ہی ہے. پرتیکش میں کوئی پرمان اس سے بڑھ کر کے ہو نہیں سکتا ہے. سب کے سامنے شری کرشن کے راجابھیشیک ہونے کے بعد میں شری رادھا رانی کا راجابھیشیک ہوا. بول سو تو ٹھیک ہے، پرنتو ہم تو شاستر کے بچنوں کو مانیں گے. مدھو نے بولے، شاستر یہ کہتے ہیں کہ برنداب سمپورن ورنداون کے ادھیشور شری شام سندر ہے. کیونکہ گوپال تاپی اپنیشد میں جتنے بھی انیہ شاستر ہیں ان انیہ شاستروں میں سروتر سروتر شام سندر کو ہی سب جگہ ادھیشور کر کے مانا گیا. بولے جب شاستر کے پرمانوں کی بات کر رہے ہو تو ہمارے بھی رادھا رانی کی شاستری روپ میں رادھا رانی کو ہی برنداون کی ادھیشوری مانا گیا. تب پرانے کے بچن ہے کہ بھائی کنٹھیشور رما پروکتا جان کی دنڈکاروں نے رکمنی دوار بچیاں کو رادھا ورنداونی بنی، رادھائی ورنداونی اونی، ورنداون کی رکشا کرنے والی سوامنی ہو کر کے شری رادھکا ہی براجمان ہے. مدھمنگل تو نرتر ہو گئے، بول نہیں نہیں ہم اس پرمان کو نہیں مانیں گے، ہمارے پاس میں اس سے بھی اور ادھک بلوان پرمان ہے. جب پورانک پرمان کی اپیکشا شروت پرمان اور بھی زیادہ بلوان ہوتا ہے. تم تو پران کے پرمان کو دے رہے ہو، ہم وید کے پرمان کو دے رہے ہیں. پران کی اپیکشا وید زیادہ پرامانک ہو کر کے براجمان. اور گوپال تاپی اپنیشد میں یہ کہا گیا کہ شری برنداون کرشن بنم، کرشن بن ہو کر کے براجمان. شری کرشن بن ہو کر کے برنداون کرشن بنم ہو کر کے براجمان ہے. شام بنم ہو کر کے شاستر میں ان کا الیکھ کیا گیا. شری چند ودیا جی مذاق اڑاتی ہوئی بولی، بولے اس براہمن کو یہ بھی پتا نہیں یہ شام بن میں شام کا بن یہ تکر سماج کر رہا ہے، جب تو یہاں پر تکر سماج ہے ہی نہیں، یہاں پر تو اپور روپ سے کرمہارے سماج ہی ہے. شیامم شاسو بنم شام بنم، یہ ارتھ ہی یہاں پر براہ بند ہو رہا ہے. یہ شامس بنم یہ تکر سماج کہاں سے کر رہا ہے، یہاں پر تو کرمہارے سماج ہے. شام شاسو بنم یہ وشیشن وشیش سمبند ہو کر کے یہاں پر تو کرمہارے سماج ہے. شام بنم کا تاتپریہ ہرا بھرا بن، یہ ہرا بھرا بن سچ شامل بن ہماری سکھی شری رادھکا کا بن ہے. ایسے جہاں پر سکھی گئے پرسپر روپ سے شری رادھا رانی کو ہی برنداون کی ادھیشوری روپ میں اوستھت کرنے والی. تو یہ شری رادھا رانی کی اپور وشیشتا. تو یہاں شری پریا جو ہے وہ گوڑ مان میں کٹاکش کرتی ہوئی کہہ رہی ہے کہ کمے بہت شرنگ ہے، ارے دیہ پشو، دیہ پشو کہہ کر کے کیوں ہمارے چرنوں میں بار بار گرا جاتا ہے. گائے ستم یدو نام آدھ پتم مگرہ مدرتو ن پرانم، ہمارے سامنے شام سندر کی مہما کا گائن مت کر مت کر. یدو نام ادھ پتم، ان شام سندر کے گھروں کا ہمارے سامنے کیوں تو گائن کر رہا ہے، کیوں گائن کر رہا ہے؟ ارے شام سندر کے گھروں کا گائن کرنا ہو تو جا مفرا واسطی استریوں کے آگے کرنا. ہمارے ورنداون میں تو جتنی بھی سکھی گئے وہ سب میری مہما کا ہی گائن کرتی ہوئی وراجمان ہوتی ہے. یہ اپنے آپ ہی ونگ ارتھ پرکٹ ہو رہا ہے کہ کتنے بہت سدنگ رہے گائے سے، گائے سے تم یدو نام ادھپتم، شام سندر کے گھوڑوں کا ہمارے سامنے کیوں گائن کر رہا ہے؟ ارے اس چنچل کے گھوڑوں کا گائن کرنا ہو تو مکھنا میں جا کر کے ان مہشیوں کے آگے ان کے گھوڑوں کا گائن کرنا. وجے سکھی نام، ارے ارجن کے جو سکھا ہے اب خبردار اسے سبل سکھا مت کہنا، اب اسے ارجن سکھا، ارجن سکھا مت کہنا، اب تو وجے سکھی نام. اب مدھمنگلانند کنج کے میں ان کا وہار نہیں ہے، اب اجلانند کنج میں شری رادھا کنڈ، شری کرشن کنڈ کے چاروں اور جو آٹھوں سکھاؤں کی کنج ہے ان میں ان کا بلاس اب کائے کو ہوتا ہوگا. ارے اب تو مسرا کی जो महल है उनमें भी विलास करते होंगे। अतः विजय सखी नाम गीयताम सत्प्रसंग। अर्जुन के जो सखा है उनकी सखियों के सामने कृष्ण की उन महसियों के आगे उनके प्रसंग को गायन कर शपित पुत्र रजस्ते कल्पयंती निष्ठा, वे तुझे तेरे उस प्रशंसा को श्रवण करके अपने मिलन जन्य उत्तमित भाव को भी भूल जाएंगे, मिलन जन्य जो पीड़ा उस पीड़ा को भी भूल जाएंगे, उत्तमित भाव को भूल करके कल्पयंती निष्ठा वे ही तुझे मिष्ट पदार्थ प्रदान करेंगे, पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारे सामने उसके गुणों का गायन मस्कर मस्कर ऐसा कहते कहते श्री प्रियाओं में श्याम सुंदर की कोख का गायन करने का की प्रवृत्ति उत्पन्न हो आई। श्याम सुंदर चंचल है, श्याम सुंदर के दोषों का गायन करने लगी। यही है उज्जवल, उज्जवल उसका नाम, जहां पर प्यारे के दोषों का विस्तार पूर्वक उच्च स्वर में गायन किया जाए। तो उज्जवल गायन करती हुई बोली कि दिल भूमि कथा रसायाम कस्तुरा कपट रुचिर हाथ भूप जन्मत या चरण रज उपास भूतिर्वयम का अपित कृपय पक्षे युक्तम श्लोक शब्द। अरे भोरा, दिल भूमि रसायाम का प्रिय, पृथ्वी पर आकाश में पाताल में कौन सी स्त्री है जो दुरापा, जो उसके रूप गुण का दर्शन करके उसकी ओर आकर्षित नहीं हो जाएगी। परंतु आज तू आया है हम शरीर की पतिव्रता मुकुटमणियों के शिरोमणियों के पास में, हम उसके रूप का दर्शन करके अब विमोहित होने वाली नहीं है, क्योंकि जो कास्त्री है वे ही विमोहित होंगे। दीर्घभूत रसायन कास्त्री, कास्त्री का तात्पर्य है कि शास्त्र ने कल्पदायक देवजीत सम्मोहित आदि सवितान न चले सुनो क्या। श्री रासलीला के प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका कर रहे हैं, बोले जो कास्त्री होगी वो ही उसके रूप का दर्शन करके विमोहित होगी। कास्त्री कौन? बोले एक होता है पुरुष, एक होता है कापुरुष। जिसमें पुरुषत्व न हो उसका नाम कापुरुष। ऐसे ही एक होती है स्त्री और एक होती है कास्त्री। जो श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके विमोहित नहीं हो, श्री ब्रज गोपिकाएं कह रही हैं हम उसे स्त्री नहीं कहेंगे, उसे कास्त्री कहेंगे, उसमें स्त्री पदा है ही नहीं। कास्त्रंगते कल्पदायक वेणुजीत, कौन सी? वो कास्त्री ही है जो तेरे कल्पदायक वेणुजीत का स्मरण करके, मगर गायन का स्मरण करके विमोहित नहीं हो। यहां पर मांग में कह रही है कि जो कास्त्री होंगी वे विमोहित होंगी। हम शरीर की पतिव्रता मुकुटमणि श्याम सुंदर के रूप को देख करके अब विमोहित होने वाली नहीं है। नहीं तो दिल भूमि के रसायन कास्त्रीय तद दुरापा, कौन सी ऐसी स्त्री है जो उसके लिए दुर्लभ है? जो चंचल स्त्री है वे ही उसके लिए सुलभ होंगी। अब हम उसकी ओर क्यों देखेंगे, क्यों देखेंगे? कपट रुचिर हाज ध्रुव जन्मती आशु। अरे वो तो महा महा ठगिया होकर के विराजमान, कपट रुचिर हास, वो कपट पूर्वक मधुर मधुर जो हास उनको प्रकट करने वाला है, भोगों को नचाने वाला है। हमको तो आश्चर्य होता है कि उसकी रूप माधुरी, उसकी भौहों का चलना, उसकी अधरों की मुस्कान है ही ऐसी कि चरण रज उपास से यस्य भूतिर वयम का, कि कोई भी उसके मधुर मुस्कान का दर्शन करके उसकी ओर विमोहित हो जाए। अरे जब लक्ष्मी भी उसके चरणों की आराधना करके विमोहित हो जाए, उसके वेणुनाद का श्रवण करके लक्ष्मी भी विमोहित हो जाए, उसके रूप का दर्शन करके वो भी वैकुंठ का त्याग करके नारायण के वक्षस्थल में विलास का त्याग करके और उसके चरणों की आराधना करने में प्रवृत्त हो जाए, तो वयम का अरे हम यदि विमोहित हो गई हो तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। अरे हम तो एक गांव की रहने वाली है, बाल्यकाल से उसके रूप का दर्शन करने वाली है, हम विमोहित हो गई हो तो इसमें आश्चर्य की बात कहा क्या है। जैसे एकदम जन्म ना बुझा श्रेष्ठ इंदिरा, जब वो इंदिरा भी उसके देवनाथ का श्रवण करके उसके रूप माधुरी का दर्शन करके उसके चरणों की आराधना करने के लिए नारायण के वक्षस्थल के विलास सुख का त्याग करके दासी बनकर के विराजमान होने के लिए तैयार है, जब लक्ष्मी आई और उसके चरणों की दासी होना चाहा तो हम जब विमोहित हो तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। लक्ष्मी के पीछे वैकुंठ की सारी विभूति भी आई और वो विभूति भी वृंदावन में आकर के ही समा गई। परंतु जैसे समुद्र में कोई लोटा दो लोटा दूध डाल दे तो कहीं पता लगे क्या, काम भुला गया, ऐसे ही स्वर्ग की वैकुंठ की सारी संपत्ति वृंदावन की संपत्ति में न जाने कहां भुला गई। तो जैसे तेजकम जन्मना ब्रजा श्रेत इंदिरा शस्त्र दत्री, जब इंदिरा आई तो इंदिरा के साथ में इंदिरा की संपत्ति भी आई और वो संपत्ति भी श्री वृंदावन का आश्रय लेकर के ही वृंदावन की संपत्ति में ही समा गई। तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है कि हम भी विमोहित हो रही हैं। चरण रज उपास से यश भूतिर भयम का अपित कृपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द है, पर जान गई कि उत्तम श्लोक शब्द ये तब ही वास्तव में सार्थक होगा जब कृपण पक्षे, जब दीनहीन के ऊपर उनकी कृपा हो। हम सभी की विकल्प गोपियों के ऊपर भी, मुझ जैसी प्रिया के ऊपर भी वो यदि कृपा करे तब जाकर के ही उसका उत्तम श्लोक ये नाम सफल होगा, अन्यथा उत्तम श्लोक ये तो केवल शब्द मात्र ही। इतने ही श्री प्रिया जो है वो श्याम सुंदर के अकृतज्ञता का गायन करने लगी। संकल्प नाम करके जो वचन वे उत्पन्न हुआ है, जो संकल्प का लक्षण वर्णन किया कि जहां प्यारे की हंसी उड़ाते हुए ठिठोली उड़ाते हुए प्यारे की अकृतज्ञता का वर्णन किया जाए उसका नाम है संजल। तो इस संजल को प्रकट करते हुए कह रही है कि ब्रज सरस पादम वेद में हम चातकार रही बोले, अरे भोरा अपने सिर को हमारे चरणों पर रखना अब बंद कर। ब्रज सरस पादम हमारे अपने सिर को हमारे चरणों से छुवाने का बार बार प्रयत्न कर रहा है, इसको छोड़ दे। हम वेद में हम अच्छी तरह से जानती हैं कि तेरे मालिक ने तुझे खूब सिखा पढ़ा करके भेजा है। चातकार अनुनय विदुषस्ते भेद दौत्य मुकुंदा, तेरा स्वामी वो मुकुंद भी चातकार अनुनय में अत्यंत विदुष है, वो चातकारी करने में बड़ा चतुर और उसने तुझे अच्छी तरह से सिखा करके भेजा कि प्रिया कितना भी मान करे तू बस उनके चरणों में ही पड़े रहना, क्योंकि मान सर्वदा प्रणामांत होता है, प्रणाम करने से मान समाप्त हो जाता है, मान की एक मर्यादा है कि प्रणाम करने पर मान जो है वो समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भाई व्याकरण भाषांत है, ऐसे प्राण जो है मान जो है वो प्रणामांत ही होता है। तो चातकार ही अनुनय विदुषः, चातकारिता में और अनुनय करने में तेरा मालिक वो मुकुंद अत्यंत चतुर है, उससे तू अभ्येद्य अच्छी तरह से सीख करके यहां पर आया है। स्वकृति ही विशिष्टा पक्ष पक्ष निर्णयों का जैसे व्याकृत चेता किम्न संदेह अस्मय, परंतु अब हम जान गई हैं स्वकृति ही विशिष्टा पक्ष पक्ष्य लोका, हाँ उसके लिए हमने पति अपत्य अन्य जितने भी लोक उन सबों का भी त्याग कर दिया। हमने पति का त्याग किया, पुत्र मन अपने छोटे छोटे से पाल्य जो शश श्रावक मृग घर में जो बक्स बछड़े थे उनका भी हमने त्याग किया, वे ही अपत्य रूप होकर के विराजमान, छोटे छोटे से जो बालक थे, ये बालक इन वृद्ध गोपिकाओं के बालक नहीं है, पायंत शिशुपय जहां पर श्री सुखदेव जी रासलीला में वर्णन कर रहे हैं वहां पर बिल्कुल सामान्य शब्द का प्रयोग किया पायंत सुतान स्तनम नहीं कहा शिशुन उपय तो ये ब्रजगोपी कह रहे सदा सदा अप्रसूत का होकर के ही विराजमान बालक इनके नहीं है जिनको श्याम सुंदर ने बंशी बजाई और जिन बालकों को छोड़कर के ये गई वे बालक इनकी नंदों के बालक थे इनकी जिठानियों के बालक थे कृष्ण कांतागणों के बालक नहीं है कृष्ण कांतागण तो ताप और स्पर्श कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा कर ही नहीं सकता वे तो बड़ी बड़ी पतित व्रताओं के द्वारा भी वंदनीय होकर के विराजमान यहां पर उसी भाव को ग्रहण करते हुए कह रही है स्वकृत यह विशिष्टा पत्य पत्य लोका बोले हम पति अपत्य अन्य लोग अपत्य मेरे संतान और अन्य लोग उन लोगों का त्याग करके हम श्याम सुंदर में ही चित्त लगा करके विराजमान हुई प्यारे को के पास में रास करने के लिए हम पधारी थी परंतु जो हम सब कुछ त्याग करके आई उनका भी यदि उसने त्याग कर दिया तो अब हम उससे प्रीति क्यों करें चिन्ह संदेह मसमिन अरे उसमें रखा क्या है कि उससे प्रीति की जाए अब हमने निर्णय कर लिया कि हम शाम से प्रीति नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी काले हुए वे सबके सब छविया हुए चिन्ह संदेह मसमिन अरे उसके साथ में संधि तो करनी ही नहीं चाहिए ये जितने भी काले हुए वे सबके सब ठगिया हुए हैं हम तो सब कुछ त्याग करके उसके पास में आई और उसने हमारा भी त्याग कर दिया अतः अब हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे कि वो हमारा त्याग करता रहे और हम उससे प्रीति करती रहे अब हमने